या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर
684. महावर दातार हम तेरे चरण मौलाना हजर इमाम पे सलवात पढ़ो जिंदा रहो अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद वाल मोहम्मद है जिंदा रहो ऐ मोमिना एक वीक हुआ जब से ये न्यूज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज रसूल ने जमात को कही जमात के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई दिल जाग उठे सुस्ती दूर हो गई जमात खाने की हाजिरी भी बढ़ गई और हर आदमी इस उम्मीद में बैठा है कि मेरा मौला आएगा मैं दीदार करूंगा क्या बात है इसके पीछे ये सब जो हुआ तो इसकी बैकग्राउंड में किस चीज ने हमें ऐसा कह दिया और कर दिया उसका जवाब एक ही है कि हम अपने मौला से मोहब्बत करते हैं दीदार का मतलब है अपने प्यारे को देखना जिसको हम लव करते हैं उसको देखने का नाम है दीदार यूं तो हम आपस में सबको देखते हैं रास्ते में चलते चलते सैकड़ों हजारों आदमी हमको मिलते हैं जाननी पहचाननी उनको भी देखते हैं लेकिन किसी को देखने से हमारे दिल की एक बीट मिस नहीं होती मगर जब इमाम आता है जब हम इमाम को देखते हैं तो हमारे दिल के अंदर उसके लिए जो मोहब्बत है वो जोश में आ जाती है क्या होता है खुशी की लहर दौड़ती है फिर क्या होता है आंखों में से पानी उतरता है मौला को देख के लोग रो पड़ते हैं ये रोना एक मोहब्बत है बहुत दिनों के बाद बहुत महीनों के बाद हमारा कोई बेटा बाहर रहता है वो जब घर पर आता है तो बाप के दिल में शायद इतनी सेंटीमेंट्स नहीं है लेकिन माँ उसको देख के रो पड़ती है मैं एक दफा मॉन्ट्रियल गया 5-6 बरस की बात है वहां हमारे एक अलवाइज हैं परवेज हयात तो वो मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में सिखाता भी है मैंने कहा परवेज मुझे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखनी है बोला अच्छा उसने बंदोबस्त किया तो हम लाइब्रेरी देखने गए लाइब्रेरियन एक लेबानीज औरत थी सलवा उसका नाम अच्छी बड़ी मोहब्बत से मिले लाइब्रेरी वगैरह देखी उसने कुछ चाय का बंदोबस्त किया था हम बैठ उसे बातें करते थे तो परवेज ने मुझे कहा कमिश्नरी साहब इस औरत को पूछो कि हाजिर इमाम इधर आए थे तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था वो बोली कि मैंने बहुत दफा देखा है कि जब आगा खान इधर आते हैं तो इस्माइली लोग उसको देख के रोते हैं और मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि भाई क्या बात है ये लोग रोते हैं मगर थोड़े महीने पहले ईसाइने से इधर आए और यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट था वो उसको लेके तो लाइब्रेरी के अंदर आए लाइब्रेरी वगैरह देखी थोड़ी देर घूमते रहे और फिर चुपचाप चले गए तो मैंने दिल में कहा कि कैसा आदमी है लाइब्रेरी देख के चला गया, मुझे बुलाया भी नहीं, थैंक यू भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, तो उसी वक्त इमाम टर्न हुए और वापस आके कहते हैं थैंक यू और मेरे कंधे पे हाथ रखा। अभी ना मालूम कोई वजह थी भी नहीं, मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हुआ, मैं रोने लगी, लेकिन मैं एक्चुअली रो नहीं रही थी, ना मालूम पानी क्यों निकल रहा था। उनको देखा, मुझे कई बरसों से मेरी पीठ में दर्द था, उसके हाथ लगाने से दर्द मिट गया आज तक। अब मुझे पता लगा कि इसको देख के बहुत से मुरीद रो पड़ते हैं, ये रोना मोहब्बत का है। हालांकि मैं ये दर्जे पे नहीं हूं, लेकिन जब उसने हाथ लगाया तो मैं खुद रो पड़ी। यह खुशी की बात होती है। तो मैं ये कह रहा था कि हम सबको देखते हैं, वो दीदार नहीं है। दीदार उसको कहते हैं कि जिसको हम प्यार करते हैं, उसको देखने से खुशी होती है। इस खुशी का नाम दीदार है। गम मिट जाता है, दुख मिट जाता है, फिक्र चिंता मिट जाती है, और जब हम ईमान का दीदार करते हैं तो हमारे गुनाह भी मिट जाते हैं। गुनाह कमजोरी है, गुनाह जो है हमारी वीकनेस है। बहुत से गुनाह हम इसलिए कर लेते हैं मजबूरी से, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है, ऐसा भी होता है, तो ऐसे वो सब गुनाह बख्शे जाते हैं। अलबत्ता मैं यहां खुलासा करना चाहता हूं, 10 गुनाह ऐसे हैं कि जो कभी भी मुआफ नहीं होते। बंदगी करने से और भी कोई कुर्बानी करने से वो गुनाह मुआफ नहीं होते, और इसका इशारा अल्लाह ने कहा है कि जो कबीरा गुनाह है वो कभी मुआफ नहीं होंगे। और हमारे इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहदातार ने भी हमें क्या कहा कि 10 गुनाह ऐसे हैं कि जो मुआफ नहीं होते। मैं आज उस डिटेल पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दूसरे सगीरा गुनाह हैं, दुआ नहीं पड़ी, भूल गए, लेट पड़ी, और कुछ हुआ, इबादत पूरी न की, कुछ बेअदबी हो गई, ऐसे हमसे बहुत से हमारी वीकनेस के कारण से गुनाह गलतियां भूल चुक हो जाती है, इसको देखने से दिल साफ हो जाता है। मिशनरियों की एक मेहमानी थी, 30s की बात है ये, यानी इस बात को 70-75 साल हो गए। मिशनरीज भी थे और दूसरे वो अमुक ऐसे भगत थे कि जो जमात खाने में गिनन वगैरह बोलते हैं, और इमाम फरमान कर रहे थे। फरमान के बाद मौला पूछते हैं, तुम्हारे में कोई ऐसा है कि जो पाक है? किसकी हिम्मत हो गई ये कहने की कि मैं पाक हूं? एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा हुआ, तो कहता है, खुदावन मैं पाक हूं। हाँ, कोई गुनाह नहीं किया, खुदावन बहुत गुनाह किए। तो फिर तुम बोलते हो गुनाह बहुत किए और फिर बोलते हो मैं पाक हूं? कहते हाँ खुदावन, पिसरुद्दीन ने कहा है, दीदार किया शाह अली तना तेनी कराया अभी चला फन। या मौला, तेरा मैंने दीदार किया, मैं पाक हो गया। बाबा बहुत खुश हुआ, शाबाश, ये ईमान की निशानी है। जब हम ईमान का दीदार करते हैं, आज मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं, हमारी नजर ईमान को जिस नजर से देखती है, दूसरे लोग भी ईमान को देखते हैं, लेकिन हम जिस तरह देखते हैं दूसरे इस तरह नहीं देखते। इसी तरह से ईमान सारी दुनिया को देखता है, मुसाफरियां करता है, सबको मिलता है, लेकिन जब वो हमारे अंदर आके हमें देखता है, उस वक्त उसकी जो नजर देखती है उस नजर से वो दूसरों को नहीं देखता। ये बात, ये कनेक्शन है ईमान का, कि हम अपने ईमान को जानते हैं कि ये कौन है, اس لیے اس نظر سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس نظر کے اندر نورانی طاقت ہوتی ہے، ہم یہ جانتے ہیں یہ مولا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے نور پاتے ہیں. تو اس نظر سے جب امام ہمارے پاس آتا ہے تو وہ نورانی نظر سے ہمیں دیکھتا ہے. اس میں اس نورانی نظر کے اندر رحم ہے، مرسی ہے، کمپیشن ہے، دیا بھاونا ہے، محبت اور پریم ہے، دلوں کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. اور امام کی میٹھی نظر جو ہے، چونکہ ہم اسماعیلی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور ہے. اے مومنوں، خدا جو ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے، اس کی کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے. تو پھر خدا ہے کیا؟ خدا انرجی ہے، نور ہے. لیکن نور کو انگلش والوں نے لائٹ کہا ہے، مگر لائٹ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے کہ جو عربک زبان کے نور میں ہے. خدا رحیم ہے، کریم ہے، رب ہے، خالق ہے. خدا کے جو 99 ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب کے سب نور میں موجود ہیں. ورڈ لائٹ کے اندر خدا کے 99 ایٹریبیوٹس شامل نہیں ہوتے. البتہ ہم جب خدا تعالیٰ کے نور کا ذکر کرتے ہیں تو کیپیٹل ایل سے لکھتے ہیں. پھر بھی عربی زبان کے ورڈ نور کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا. نور خدا تعالیٰ خود ہے، اللہ نور ہے. خدا کہتا ہے کہ زمین و آسمانوں کا جو نور ہے وہ خدا ہے. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور خدا تعالیٰ. وہ لائٹ، وہ نور ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہی نور کہ جس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے رحیم، خدا رحیم ہے. خدا نے اپنی رحمت کو ایک انسان بنا دیا اور اس انسان کا نام ہے محمد. خدا کی جو رحمت ہے وہ پرسونیفائی ہوئی محمد کے اندر. اس لیے خدا تعالی نے محمد کو کہا، اے محمد تم رحمت للعالمین ہو. جتنے بھی خدا کی کریشن ہے اس کے اندر رحمت محمد ہے. اور پھر خدا تعالیٰ کے اندر جو طاقت ہے، خدا تعالیٰ کے اندر جو مائٹ ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، اس کو کہتے ہیں قوت، اور وہ علی ہے. تو خدا تعالیٰ کا جو نور ہے وہ محمد اور علی سے مل کے بی بی فاطمہ کی معرفت، امام حسین، امام زین العابدین اور ان تمام اماموں میں سے اترتے اترتے آج مولانا حضرت امام کے اندر وہ جو نور موجود ہے، وہ نور ہمارا مالک ہے. ہم اس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ظاہر کی آنکھیں وہ نور نہیں دیکھ سکتی. البتہ عبادت کرو بیت الخیال میں تو کسی دن وہ رحم کرے تو اپنا نور دکھائے. لیکن ظاہر میں جیسے کہ ایک کیمرہ ہے، وہ جب پکچر لیتا ہے تو جو آبجیکٹ ہے اس کا عکس پڑتا ہے فلم کے اوپر، اور جتنے بھی اس میں رنگ ہیں تمام کے تمام وہ رنگ کیمرہ کے لینز میں سے نکل کے اس فلم میں آ جاتے ہیں. بالکل اس بات کو بھولنا نہیں، جب امام کو دیکھو گے تو امام کی شکل، ہماری آنکھوں کے کیمرہ کے لینز کی معرفت، ہمارے مائنڈ کے اندر جو فلم ہے اس پہ جو امپریشن آتا ہے وہ امپریشن نوری امپریشن ہے. امام کی آنکھوں میں نور ہے. اس نور کا امپریشن جب ہمارے دل پہ پہنچتا ہے एक पीस पैदा होती है, ट्रैंक्विलिटी, खुशी पैदा होती है। आदमी को ऐसा लगता है मैं हल्का हो गया हूं, हल्का यानी लाइट फील करता है, वजन हैवी पना मिट जाता है और एक किस्म की खुशी पैदा होती है कि वो खुशी खाने पीने किसी और जरिए से नहीं मिलती, वो खुशी बिल्कुल जुदी खुशी है। ये खुशी हमको इमाम के जाहिरी दीदार में भी मिलती है और इसीलिए जाहिरी दीदार जो है वो हमारे अंदर एक किस्म की, देखो अभी तक हाजिर इमाम आए नहीं है दुनिया भर में, सिर्फ न्यूज मिली है तो जमातों के अंदर एक किस्म की खुशी पैदा हो गई है, अवेकनिंग पैदा हो गई है, आदमी जाग उठे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि मौला आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुरीद हाजिर इमाम को देखता है तो उसको वो तमाम खुशियां मिलती हैं कि जो होनी चाहिए। ए मौला, मैं खड़ा हूं कि तेरे सामने हाथ जोड़ के कहता हूं तू मुझे दीदार अता कर। और दीदार की मांगनी करना ये हमारे मजहब के एक्शंस में से एक एक्शन है, दुआओं में से एक दुआ है। मांगने वाली चीजों में एक आला दर्जे की चीज यह है कि दीदार की मांगनी की जाए। और दीदार के लिए इतने हमारे गिनानों के अंदर पाठ मौजूद हैं जुदी जुदी किस्म के, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दीदार जो है महबूब का, माशूक का, अपने बिलव्ड का, जिसको हम प्यार करते हैं उसको देखने का नाम दीदार है। और दीदार से दिल को खुशी पैदा होती है और इस खुशी का इजहार हमारे अंदर की बहुत सी गलतियां, गुनाह, मिस्टेक्स, एरर, धूल मिट्टी सब क्लीन करके हमारे दिलों को, हमारे ईमान को ताजा और फ्रेश कर देती है। हज़रत इमाम का जो दीदार है, जिस दिन दीदार करो, मैंने 10 बरस से क्या ज्यादा, 87 में 13 और 5 18 साल हुए, टोरंटो के डॉन मिल्स जमात खाने में मैंने एक वाइज की थी दीदार पर। मैंने कहा कि अल्लाह मेरे यहां जो दीदार है हाजिर इमाम का दीदार, आप कभी देखो इसको मोहब्बत और अपने ईमान से देखो, इसके चेहरे के रंग बदलते हैं, सबको देखता है। 10,000 आदमी बैठे होंगे तो हर एक से उसकी आंख मिलती है, ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन सबको ये फील होता है कि मौला मुझे देखता है, ये उसकी ताकत है। उसके चेहरे के रंग बदलते हैं। मैंने कहा इस चेहरे में जो मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सलवातुल्लाह का चेहरा है, उसमें सुल्तान मोहम्मद शाह का चेहरा है, उसमें अली शाह का चेहरा है, उसमें शाह हसन अली शाह का चेहरा है, उसमें मौलाना हाकम का चेहरा है, उसमें मौलाना मुस्तनसिर बिल्ला का चेहरा है, इसने जितने भी जामे किए हैं उनके जो अक्सर रिफ्लेक्शन इस चेहरे में हैं। किस चेहरे का दीदार करना है आपको? अली को देखना चाहते हो? अली दिखेगा। 1923 में हिंदुस्तान की हालत ऐसी थी कि आर्य समाज मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई मुसलमानों में से कि वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी की हरिजन मूवमेंट थी एक, कि जो भंगी चमार छोटी क्लास के लोग हैं हिंदू, उनको डिप्रेस क्लास समझते थे, अनटचेबल समझते थे, उनको वो एमेंसिपेट करना चाहता था। ऐसे समय के अंदर क्रिश्चियन लोगों ने जगह जगह अपने मिशन शुरू किए कि ये जो नीच क्लास के लोग थे जिनको हिंदू हेट करते थे उनको वो क्रिश्चियन बनाते थे। ये 1921 से शुरू हुआ और 1925-26 तक बड़ी गर्मी रही हिंदुस्तान के एटमॉस्फेयर में। उस वक्त 1922-23 में مولانا امام سلطان محمد شاہ تاتار نے دو مشنریوں کو اپوائنٹ کیا. ان دو مشنریوں میں سے ایک خدا بخش تھا, خدا بخش طالب ہمارا یہاں کے کاؤنسل کا پریزیڈنٹ ہے, اس کا پردادا تھا. دوسرا ایک مشنری تھا اور وہ مشنری تھا علی محمد دایا, جو 108 برس کی عمر تک کسومو میں جیتا رہا اور تھوڑے برس ہوئے گزر گیا. ان دو مشنریوں کو اپوائنٹ کیا کہ تم ادھر جا کے یہ جو نیچ کلاس کے لوگ ہیں جن کو ہندو ہیٹ کرتے ہیں ان کو اسماعیلی بناؤ. اور یہ موومنٹ شروع ہوئی اور 3-1 برس کے اندر الحمدللہ ان مشنریوں نے 2-3 مشنری اور بھی آ گئے, لگ بھگ 3,500 لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. اس میں ایک آدمی تھا پیرانی کر کے, وہ تھا تو ہندو لیکن کرسچن ہو گیا تھا. اس کو ہمارے مشنریوں نے اسماعیلی مذہب میں انٹروڈیوس کرایا. اس میں میرے خود کے فادر ان لا تھے مشنری محمد مراد علی, اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہے. وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے لیکن میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ بھگوان کا اوتار ہے, رام ہے, کرشن ہے, عیسیٰ ہے, موسیٰ ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا بمبئی آئے, امام کورس بھی گئے کہ خداوند ادھر ایک آدمی ہے وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے. بولا آ کے بیٹھا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھگوان گجراتی میں بولتا تھا, یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے مشنری کہ رام کا اوتار آپ تھے, کرشن کا اوتار آپ تھے. مربع فرمایا سچ ہے, تو اگر یہ بات سچ ہے وہ کہتا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھ سے کہ آپ مجھے وہ روپ دکھاؤ کہ گوپیوں کے ساتھ راس کھیلتے تھے کرشن کے اوتار میں. ماں باپ ہنسے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے دیکھا, ایک منٹ بھی نہ ہوا وہ مولا کے سامنے سجدے میں گر گیا, آنکھوں سے خوب آنسو نکلے, بہت خوش ہوا, بہت رویا. مولا نے اس کا نام جعفر علی رکھا. اس کا پوتا آج بھی ادھر ٹورنٹو میں رہتے ہیں, بیٹا بھی ہے, اور بہت برسوں تک مورگورا کے اندر اپنا ریلیجن ٹیچر بھی تھا. میں پرسنلی اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, گزر گیا بیچارا. لیکن بعد میں وہ بولتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کرشن گوپیوں کے ساتھ راس کھیل رہے ہیں, وہ روپ میں نے دیکھا. ایمان جو ہے وہ تمام روپ کے اندر موجود ہے. ہم انسان ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ایمان کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں, لیکن دیندارو یہ جو پرندے ہیں نا, پنچھی برڈس, یہ اینیملز, یہ لوگ بھی ایمان کا دیدار کرتے ہیں لیکن کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. ساری دنیا میں اس کا نور موجود ہے, ہر جگہ. جس طرح چاند سورج کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے, اس طرح خدا کا نور ہر جگہ موجود ہے. ہم خوش نصیب ہیں اسماعیلی کہ وہ نور سینکڑوں ہزاروں برس سے اترتے اترتے آج ہمارے پاس ہمارے امام کی معرفت سے ہمیں ملتا ہے. حضرت امام کے آنے کی طلب کرو, اس نور کو دیکھنے کی طلب کرو, سیکھ اس کے دیدار کو, سیکھ کرو, ڈھونڈو, تلاش کرو اور اس حضرت امام کے دیدار کو سمجھنے کی ایک اور کوشش کرو. آج میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. میری ٹپ یہ ہے, ہماری یہ دو آئی بروز ہیں, ان دو کے بیچ میں پریشانی کے اوپر اس جگہ نارمل ہندو عورتیں ادھر ایک چھوٹی سی بندی لگاتی ہیں, یہ وہ جگہ ہے کہ اگر یہاں سوراخ کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک انچ جتنی कैविटी है। हम जब सांस लेते हैं तो ये सांस उस कैविटी में से निकल के हमारे लंग्स में जाता है। इस जगह आप इमाम को अच्छी तरह से देखो, पिंकिश लाइट, बहुत ब्राइट नहीं लेकिन पिंकिश लाइट फ्लिकर करती होगी। यहां इमाम की इस परेशानी में हमको पिंकिश लाइट दिखेगी, किसी को दिखेगी किसी को नहीं दिखेगी, उस आदमी के खुद के ईमान के ऊपर इस आधार है ये। और ये लाइट हमेशा होती है, खसूसी तौर पे जब मौला अपने मुरीदों के अंदर आता है तो इस लाइट की बख्शिश मिलती है उन लोगों को कि जो इसके लायक होते हैं। मगर है, इमाम के चेहरे को देख के सलवात पढ़ो और अपने दिल में उसकी मोहब्बत को फील करो। लेकिन जितने दिन बाकी हैं, आज किस तारीख हुई, 10 दिन मई महीने के बाकी हैं, 10 दिन दूसरे हैं, 19-20 दिन हैं, इन 19-20 दिन के अंदर इस महाशूक को मिलने के लिए हम क्या तैयारी करें? कुछ न कुछ तो करना होगा ना। अगर हमारा महबूब आता है तो हम उसकी कुछ तैयारी करें, फूलों का हार लेके जावे, कुछ खाना पकाए, कुछ ऐसी चीज तोहफा देंगे उसको। उसकी तैयारी ये है कि इबादत करो, हर रोज जमात खाने पहले से ज्यादा आओ, और खास तौर पे दुरूद पाक की यानी सलवात की तस्बीह निकालो। उसके आने से पहले अपने आप को ये तैयार करो कि ए मौला, तू जो आता है तेरी रहमतों तेरी करामतों तेरी नूरानी बख्शिशों को मैं उठा सकूं और समझ सकूं, उसके लिए तू मुझे ताकत दे। ये हमारी तैयारी है कि हम उस इमाम को भेजना के लिए याद करते हैं। इस इंतजार में हम उसके लिए आजजी करते हैं कि हमको वो बख्शिशें दे कि जो बख्शिशें तू अपने प्यारों को देता है। अपने दिल में इसके लिए रोज तमन्ना करो, तेरे पांव लगूं मेरे मौला, मुझे तू दीदार दे। दीदार की मांगनी एक अजीब बात है, फिर सदर दिन, फिर हसन कबीर दिन, फिर ताज दिन, फिर नसीर दिन, फिर साहेब दिन, फिर शमसुद्दीन, फिर सदगुरु नूर, हमारे इन तमाम महान पीरों ने इमाम के दीदार की तमन्ना की है। और दीदार के ऊपर हमको तैयार होने के लिए वो रास्ते दिखाए हैं। और इसलिए ए मोमिनों, अपने आप को भी पाक पवित्र बनाने की कोशिश करो। हमारी भूलें, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह, हमारी बदियां बुराइयां छूट जानी चाहिए। इमाम का दीदार करके मांगनी करो दिल में, या मौला मेरी सबसे बड़ी ये बदी है, इस बदी को तो दूर कर दे। बहुत सी बदियां हमारे अंदर, इन बदियों का जिक्र करने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई बदफेलियां करता है, खराब नजर करता है, बहुत से किस्म की हमारे अंदर बुराइयां मौजूद हैं। लेकिन इमाम के दीदार के वक्त कम से कम एक बड़ी बुराई को दूर करने की दुआ मांगो। ए मोमिनो, आप सब मोमन हो, आपके दिलों में इमाम की मोहब्बत है, बात सिर्फ समझ की है, और वो समझ मौला देता है। आबाद रहो, सुखी रहो, मौला बरकत देवे, ईमान ज्यादा करे, अपनी मोहब्बत ज्यादा करे, अपनी मारिफत देवे, अपनी रहमत को समझने की हमें तौफीक देवे, और मौला के लायक मुरीद बनने की हमें तौफीक देवे, हमारी नेक उम्मीदें पूरी करे, आने वाले वक्त और टाइम के लिए हमें तैयार करे। ऐ मौला, तेरे खेल निराले हैं, और आज जो तू कुछ कर रहा है, देखो मौला दिनदारो कितना घूमता है, कितना घूमता है, कितना फिरता है, एक यंग आदमी भी नहीं कर सकता। ये आने वाले जौमे के लिए तैयारियां हो रही हैं। जिस तरह सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने जमात को इस काबिल बना दिया कि वो मामूली हालत से निकल के एक किस्म की रॉयल फैमिली बन गई और हजर इमाम को ये सब सौंपा, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे कि ये एटॉमिक एज का इमाम है। और 1973 में नैरोबी के अंदर हजर इमाम ने यह कहा कि मैं तुम्हारा एटॉमिक एज का इमाम हूं, इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर स्पेस एज का इमाम आएगा। और ये फरमान प्रिंटिंग में भी है। तो वो आने वाले इमाम के लिए और आने वाले वक्त के लिए जमात कैसी होगी और जमात को क्या करना होगा, आज इमाम उसके लिए बंदोबस्त कर रहा है। ये पदरामनी एक खास सिग्निफिकेंट है। दो बरस के बाद हजर इमाम की गोल्डन जुबली है। इस गोल्डन जुबली के लिए हमें क्या करना होगा? हजर इमाम को रूहानी तौर पर तैयार करा रहे हैं। अभी तक हजर इमाम ने इस बात के लिए कि उसकी जुबली किस तरह मनाई जाए इसके लिए डिस्कस नहीं किया, रखा हुआ इसी तरह से। लेकिन हमको इंशाल्लाह मौला के उस गोल्डन जुबली की देखने और सेलिब्रेट करने की मौला तौफीक देवे और आप सबको और आपकी आल औलाद को मौला खुशियां देवे, बरकतें देवे। सुखी रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, दीन में दुनिया में मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, चढ़ती करे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, दसवन सुकदीर में पढ़ा रखे, फरमान बरदार मोहब्बत करने वाला मामन बनावे। ऐसा